नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम की पुस्तक में से मरकुस रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको लाभ मिल रहा है। इसमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उसकी सेवकाई के विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों।
प्रिय मित्र, आप सबको प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज भी प्रतिदिन की तरह परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, हमने पिछले अध्ययन में अध्याय 7 पर विचार किया और जिसमें हमने मनुष्य के उन विचारों के बारे में देखा जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, और हमने इस बात को देखा कि मनुष्य के मन के अंदर से बुरी बुरी चिंता, व्यविचार, चोरी, हत्याएं और कुदृष्टि, ये सारी बातें मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। आज हम अध्याय 8 से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे और इस अध्याय में भी हम कुछ मुख्य विषयों पर विचार करेंगे। ये अध्याय 8 भी लगभग उतना ही बड़ा है जितना अध्याय 7। इसकी विषय वस्तु भी काम करने पर बल देती है। यीशु दिकापुलिस के सागर तट पर जनसमूह को भोजन कराता है जिसमें पुरुष मात्र ही 4,000 थे। फरीसी उससे चिन्ह दिखाने की मांग करते हैं और बैतसैदा में एक अंधे मनुष्य के मित्र उससे निवेदन करते हैं कि वह उस अंधे व्यक्ति को स्पर्श करे। आगे कैसरिया फिलिपी में पतरस अपने विश्वास का अंगीकार करता है। यीशु जो कुछ करता था वह रोमियों के लिए महत्वपूर्ण था, वह हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। क्या प्रभु यीशु गहराई तक मुक्ति दिला सकता है? मित्रों, क्या वह यह काम कर सकता है? वह परमेश्वर का सेवक है और हम देखेंगे कि वह काम कर सकता है। मित्रों, इस अध्याय में हम देखते हैं कि वह बहुत अधिक यात्रा कर रहा है। उस युग में मार्ग भी अच्छे नहीं थे, वह स्थान अधिक विस्तृत नहीं है, परंतु जहां तक पैदल यात्रा की बात है वह क्षेत्र बड़ा ही समझा जाता है क्योंकि यीशु पैदल ही यात्रा करता था। कुछ लोगों का यह मानना है कि 4,000 पुरुषों को भोजन कराना जो यह आरंभ में दिया गया है वह 5,000 पुरुषों को भोजन कराने की घटना ही है जिसे फिर से इस रूप में लिखा गया है, इसलिए वे इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जब कोई आलोचक इस घटना पर आता है तब वह बाइबल को अलौकिक से अलग करना चाहता है। वह कहता है कि 5,000 को भोजन कराने के बाद इस चमत्कार को शिष्यों ने केवल इसलिए लिपिबद्ध किया कि वे यीशु की चमत्कारी शक्तियों के दावे की पुष्टि कर पाए। अतः यदि यह सच है तो यह आश्चर्यकर्म पहले से अधिक महान होता। वे 4,000 के स्थान पर 10,000 लोगों का उल्लेख करते। जब कोई कहानी बनाता है तो वह बढ़ा चढ़ाकर कहता है, परंतु यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मित्रों, ये दोनों आश्चर्य कर्म एक से ही हैं, परंतु उनमें 7 अंतर हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहला है, पहली घटना में जनसमूह एक ही दिन यीशु के साथ, परंतु दूसरी घटना में वे 3 दिन तक एक साथ थे। दूसरा है, पहली घटना में यीशु ने शिष्यों से कहा था कि वे पता लगाएं किसके पास भोजन है, परंतु दूसरी घटना में वे जानते थे कि किसके पास कितना भोजन है। तीसरी बात, पहली घटना में 5 रोटियां और 2 मछलियां थी जबकि दूसरी घटना में 7 रोटियां और कुछ मछलियां थी। और चौथी बात, पहले आश्चर्य कर्म का समय फसह के निकट था जब चारों ओर हरियाली होती है, उन्हें घास पर पंक्ति में बैठाया गया था, परंतु दूसरे आश्चर्य कर्म के समय घास सूख गई थी और जनसमूह सूखी भूमि पर बैठा था। पांचवा है, पहली घटना में प्रभु ने रोटी को आशीष दी थी जबकि इस बार वह धन्यवाद देता है और फिर मछलियों को आशीष देता है। छठवां, 5,000 को भोजन कराने के बाद 12 टोकरियां बची हुई रोटी उठाई गई थी, परंतु 4,000 को भोजन कराने के बाद 7 टोकरी बची रोटियों को उठाए गए। और सातवां, स्पष्ट है कि हर बार जनसमूह की संख्या भिन्न थी। दोनों घटनाओं में जो सबसे बड़ा अंतर है वह समय का है। यीशु ने जब 5,000 को भोजन कराया था तब पहले दिन का अंत हो रहा था। यीशु उन्हें शिक्षा दे रहे थे, परंतु यूहन्ना के वृतांत के अनुसार यीशु ने उन्हें भोजन कराया और उसके बाद जीवन की रोटी का प्रवचन सुनाया। मित्रों, अब यह 4000 का जनसमूह 3 दिन तक यीशु की शिक्षा सुनता रहा। उसके बाद यीशु ने उन्हें भोजन कराया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जनसमूह भोजन करने नहीं, यीशु की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। मेरे विचार में यह हमारे लिए एक उत्तम सबक या शिक्षा है। क्या हम कलीसियाई सहभागिता में भोजन भीड़ इकट्ठी करने के लिए करते हैं? यदि ऐसा है तो हमारे उद्देश्य उचित नहीं है। मित्रों, अनेक कलीसियाओं में अनेक लोग साप्ताहिक सभाओं में तब ही आते हैं जब भोज का आयोजन किया जाए। बाइबल कक्षाओं को भोज के आयोजन पर निर्भर करना पड़ता है कि लोग आए, अन्यथा लोग नहीं आते हैं। क्या परमेश्वर ऐसे प्रयासों पर आशीष देगा, चाहे उनके उद्देश्य शुद्ध ही क्यों ना हो? मैं इसका उत्तर आप पर ही छोड़ देता हूँ। अध्याय 8 के आरंभ में वह लिखता है, उन दिनों में, जिसका संदर्भ उस समय से है जब यीशु दिकापुलिस में था। भीड़ यीशु का उपदेश सुनते सुनते निर्जन प्रदेश में आ गई थी और उपदेश देने के लिए तो यह स्थान अति उत्तम था, परंतु भोजन आदि का वहां कोई भी प्रबंध नहीं था। ध्यान दीजिए कि इस समय तक यीशु का नाम बहुत फैल चुका था और असंख्य लोग उसका अनुसरण करते थे। मरकुस रचित सुसमाचार 8:1-6 में पढ़ते हैं, उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को न था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया कि यहाँ जंगल में इतने रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हो। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखें। उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। मित्रों, यहाँ एक बड़ी रोचक बात है। ऐसा प्रतीत होता है कि शिष्य 5000 के जनसमूह को भोजन कराने के चमत्कार को भूल चुके थे। मेरे विचार में हम में से अनेक की यही स्थिति है। परमेश्वर हमारे लिए कोई अनुग्रहकारी काम करता है और हम उसे भूल जाते हैं, और जब फिर से परिस्थिति घोर आवश्यकता की आ जाती है, तब हम सोचने लगते हैं कि वह एक नई परिस्थिति है। मैं आपको एक कैंसर रोगी का उदाहरण देता हूँ। वह हर बार परीक्षण के लिए जाता है तो उसके मन में एक नया भय रहता है, जबकि वह जानता है कि उसे कैंसर है। इसी प्रकार शिष्य भी पुराने अनुभव को भूलकर नए सिरे से चिंतित हो गए थे। मित्रों, ऐसा प्रतीत होता है कि शिष्य पहले से ही खोज कर चुके थे, क्योंकि वे जानते थे कि उपलब्ध भोजन की मात्रा कितनी है। यह भी संभव है कि वे यीशु से आशा कर रहे थे कि वह 5000 को खाना खिलाने वाले चमत्कार को दोहराएं। इस बार जनसमूह तो संख्या में कम था, परंतु रोटियां पहले से अधिक थी। परंतु उस विशाल जनसमूह का 7 रोटियों से क्या भला होगा? इस बार रोटियां किसके पास से आई कोई नहीं जानता, परंतु उसे प्रतिफल अवश्य मिलेगा। मित्रों, इस बार मछलियां कितनी थी? पिछली बार तो 2 मछलियां थी। लिखा है कि उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी। यहां मात्रा का कोई महत्व नहीं है। जब परमेश्वर साथ है तो आपूर्ति आवश्यकता से अधिक होती है। वह नाश्ता नहीं कराता है, वह पेट भर खाना खिलाता है। मित्रों, यदि हम प्रत्येक पुरुष के साथ एक स्त्री और एक बच्चे को मानकर चलें, तो कुल संख्या 12000 होगी। और अब हम मरकुस 8:10 में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और वह तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनुता देश को चला गया। मित्रों, दलमनुता प्रदेश की भौगोलिक स्थिति आज यथोचित निश्चित नहीं की जा सकती है, परंतु यह तो निश्चित है कि वह गलील सागर के तट पर था, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए गलील सागर को पार करना होता था। इसका अर्थ यह हुआ कि वे पश्चिम की ओर नाव से आए थे, अतः स्पष्ट है कि वे उत्तर पश्चिम तट पर उतरे। यहां भी उसके खून के प्यासे उसके पीछे लगे हुए थे। तब हम मरकुस 8:11-15 में आगे पढ़ते हैं, फिर फरीसी निकलकर उसे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। उसने अपने आत्मा में आह मार कर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया। और वे रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। और उसने उन्हें चिताया कि देखो, फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। मित्रों, धर्मशास्त्र में खमीर गलत या बुरी शिक्षा का प्रतीक है। इसका आशय सुसमाचार से कदापि ना समझें। आज हमारी शिक्षा में भ्रम व्याप्त है। जब हम मत्ती 13 उसके 33 की व्याख्या में खमीर को सुसमाचार की संज्ञा देते हैं, तो उस स्त्री ने आटे में खमीर मिलाया था। खमीर मनुष्य के स्वाद के लिए मिलाया जाता था। उदारवाद वास्तव में क्या है? उदारवाद यही है कि जिस प्रकार मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए आटे में खमीर मिलाया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए गांठ गांठ को जांचने वाले वचन में झूठी शिक्षा को मिला दिया करते थे। यहां यीशु उन्हें चेतावनी दे रहा है कि फरीसियों और हेरोदेस की शिक्षा से दूर रहें, अर्थात गलत शिक्षा से दूर रहें। मार्कुस 8 उसके 18 पद में हम आगे पढ़ते हैं, क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते और तुम्हें स्मरण नहीं? मित्रों, मैं लंबे समय से प्रचार का काम कर रहा हूं और मैं कभी कभी इस बात को देखता हूं कि बाइबल में ऐसी बात दिखाई दे जाती है जो मुझे चकित कर देती है। कभी किसी प्रचारक के लिए मैं सोचता हूं कि वह आत्मिक सच्चाई को जानता है, परंतु जब वह विषय वस्तु से चूक जाता है तो अचंभा होता है। ऐसे लोग भी हैं जो वर्षों से बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, परंतु वे इन शिष्यों की नाई हैं, जिनके कान हैं परंतु सुनते नहीं हैं। मार्कुस 8:19 से 21 पद में हम पढ़ते हैं कि जब मैंने 5,000 के लिए 5 रोटी तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12 टोकरियां। और जब 4,000 के लिए 7 रोटी थी तो तुमने टुकड़ों की कितने टुकड़े भरकर उठाए थे? उन्होंने उससे कहा, 7 टोकरे। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझे? मित्रों, परमेश्वर का वचन जीवन की रोटी है, क्योंकि वह परमेश्वर को प्रकट करता है। हमें बाइबल से आत्मिक भोजन करना है, परंतु झूठी शिक्षाओं से सावधान रहना है। मेरे विचार में इन पदों से यही बात स्पष्ट की गई है। मार्कुस 8 उसके 22 पद में हम पढ़ते हैं, और वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसे छुए। मित्रों, हमारे प्रभु के अद्भुत चमत्कारों में से एक और चमत्कार यह है कि यीशु ने उनकी याचना सुनी और उसे नगर से बाहर ले गया। क्या वैतसदा नासरत के समान हो गया था कि अनेक सामर्थी कार्य करने के बाद वह वहां आश्चर्य कर्म नहीं कर पा रहा था? थूक में औषध गुण तो होते नहीं है, फिर उसने उसकी आंखों में थूक क्यों लगाया? यीशु उसके विश्वास को बढ़ाना चाहता था। आइए हम इसमें से आत्मिक सच्चाई को खोजें। मार्कुस 8:23 से 26 पद में हम आगे पढ़ते हैं, वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूं, क्योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड़। तब उसने फिर दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और उसने ध्यान से देखा और चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। और उसने उससे यह कहकर घर भेजा कि इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। मित्रों, बैतसैदा पर परमेश्वर के दंड की घोषणा की जा चुकी थी, जिसे हम मत्ती 11 उसके 21 पद में पढ़ते हैं। इस आश्चर्य कर्म में ध्यान देने योग्य बातें हैं जिनका हम अवलोकन करेंगे। यीशु ने ऐसा क्यों किया? क्या वह इस मनुष्य की आंखें यह सब किए बिना नहीं खोल सकता था, जैसा उसने अन्यों के साथ किया था? उसने इसके द्वारा उस पुरुष और हमारे लिए शिक्षा प्रदान की है। इस प्रक्रिया में 3 चरण हैं। पहला, अंधापन। हम सब आत्मिक अंधे हैं। उस अंधे व्यक्ति की नाई हम कह सकते हैं, मैं अंधा था पर अब देखता हूं, परंतु उसे धुंधला दिखाई दे रहा था। केवल मार्कुस ही इस तथ्य का उल्लेख करता है। और दूसरा है धुंधला दिखना। क्या आज यह हमारी स्थिति नहीं है मित्रों? अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने हम देखेंगे। यह हमें पहला क्रंथियों के पत्र 13 अध्याय के 12 पद में मिलता है। मित्रों, मुझे यदा कदा या कभी कभी किसी न किसी से पत्र प्राप्त होते रहते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें गहरी आत्मिक समझ प्राप्त है, वे सर्वोत्तम 10 आत्मिक मनुष्यों में हैं और उनके अनुसार मैं भी वहां हूं, परंतु मैं आपके समक्ष स्वीकार करता हूं कि मुझे धुंधला सा दिखाई देता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसा नहीं सोचते। वे सोचते हैं कि उन्हें संपूर्ण एवं परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया है। यह हमारी उत्तम बाइबल शिक्षक कलीसियाओं का श्राप है। मैं अनेक वर्षों से कलीसिया के साथ जुड़ा हूं और मेरी कलीसिया में कुछ ऐसे लोग भी थे जो साप्ताहिक बाइबल शिक्षण कक्षाओं में कभी नहीं आए। क्या आप जानते हैं क्यों? वे मुझसे अधिक जानते थे, यह सच हो सकता है, परंतु दुर्भाग्य की बात तो यह थी कि वे सोचते थे कि वे उससे भी अधिक जानते हैं जितनी उनकी समझ है। मित्रों, सुकरात ने जीवित रहते हुए कहा था कि वह एथेंस वासियों में सबसे अधिक बुद्धिमान था। यह सुनकर सबको अचंभा हुआ क्योंकि वह अति दीन व्यक्ति था। लोगों ने पूछा कि उसके कहने का अर्थ क्या था। उसने उत्तर दिया, बहुत से एथेंस वासी यह सोचते हैं कि वे ज्ञानवान हैं और मैं जानता हूं कि मैं अज्ञानी हूं, और क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अज्ञानी हूं, इसलिए मैं एथेंस वासियों में सबसे अधिक बुद्धिमान हूं। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि आज अनेक पवित्र जन हैं जो सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, परंतु पौलुस जैसा विद्वान व्यक्ति कहता है कि हमें धुंधला सा दिखाई देता है। इस जीवन में हमारी यही दशा है, परंतु एक दिन जब हम उसकी उपस्थिति में आएंगे तब हमारा ज्ञान पूरा होगा। मित्रों, मैं निश्चय ही वहां पहुंचकर अति प्रसन्न हो जाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और तीसरी बात हम देखते हैं, उत्तम दृष्टि। तीसरा चरण उत्तम दृष्टि है। जब हम उसकी उपस्थिति में होंगे तब हमारी दृष्टि सिद्ध होगी और उसी समय हम वास्तव में देखने योग्य होंगे। जब प्रभु यीशु की प्रक्रिया पूरी हुई तब वह व्यक्ति पूरी तरह देख सकता था। यहां एक विषय है, पर संपूर्ण विवेचन का समय हमारे पास नहीं है, परंतु हम ध्यान देने से न चुके कि यीशु ने अंधों को दृष्टिदान देने में अलग अलग विधियां काम में ली थी। इस व्यक्ति की उसने आंखों का स्पर्श किया जिससे इस व्यक्ति को वैयक्तिक अनुभव प्राप्त हुआ। बर्तिमय को दृष्टिदान देने में यीशु ने दूर ही से कह दिया था और विश्वास ही के द्वारा उसे दृष्टि प्राप्त हो गई। मित्रों, मेरे विचार में उसने कलीसिया बनाई होगी जो गा रही होगी केवल विश्वास से। वह व्यक्ति जो जन्म का अंधा था उससे यीशु ने कहा कि वह जाकर शीलोह के कुंड में आंखों को धो ले। इसे हम यूहन्ना 9 में पाते हैं। इस व्यक्ति ने शीलोह बपतिस्मा कलीसिया बना ली होगी जो गाएगी, आओ हम नदी किनारे चलें। आप कहेंगे कि यह बकवास है, निसंदेह उस युग के लिए, परं्तु आज ऐसा ही हो रहा है। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि यह हमारे लिए एक सबक है, एक शिक्षा है? मार्कुस 8 उसके 27 पद में हम पढ़ते हैं जहां पर लिखा है, यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिपी के गांव में चले गए और मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। मित्रों, यहां जो महत्वपूर्ण बात है वह है यीशु कौन है। यीशु जानना चाहता था कि मनुष्य उसके बारे में क्या सोचता है। मेरे मित्रों, उसके साथ एक होना, उसकी सहभागिता में होना ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है। हमें मसीह यीशु के साथ उचित संबंधों का आनंद लेना है। आप नक्शे में देखेंगे तो 3 कैसरिया नगर पाएंगे। कैसरिया फिलिपी गलील सागर के उत्तर में स्थित है। यीशु ऐसे स्थान में है जहां से वह मुड़कर सीधा यरूशलेम में क्रूस की ओर अग्रसर होते हैं। मार्कुस 8 उसके 28 पद में हम पढ़ते हैं, उन्होंने उत्तर दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पर कोई कोई एलिया और कोई कोई भविष्यवक्ताओं में से एक भी कहते हैं। मित्रों, उसके मनुष्यत्व के बारे में बड़ी उलझन थी। मनुष्यों की राय तो बहुत ऊंची थी, परंतु जो वह वास्तव में था उससे कम थी। मार्कुस 8 के 29 में लिखा है, उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पत्रस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। यीशु के सेवा कार्य के प्रथम चरण में शिष्यों की यह पहली परीक्षा थी। वे अभी क्रूस से 6 महीने दूर थे। यह शमौन पत्रस का सर्वोत्तम व्यक्तित्व था। उसने शिष्यों की ओर से यह कहा था। मरकुस पत्रस के अंगीकार का केवल एक भाग ही व्यक्त करता है, उसका नाम मसीह नहीं यीशु था। मसीह यीशु की पदसूचक उपाधि थी। इब्रानी में यह है मसीहा, जिसका अर्थ है अभिषिक्त जन। यह उपाधि पुराने नियम के सब सर्वान अर्थों को समाहित करती है, इसमें परिपूर्णता है। देखिए मीका 5 उसका 2, यशाया 7 का 14, भजन संहिता 2 का 2, भजन संहिता 45 का 6 और 7, मलाकी 3 का 1, ये पुराने नियम के संदर्भों में से कुछ हैं। यीशु परमेश्वर को प्रकट करने आया था। तब हम मार्कुस 8 उसके 30 पद में पढ़ते हैं, तब उसने उन्हें चिता कर कहा कि मेरे विषय में यह किसी से न कहना। यह विचित्र चेतावनी क्यों? क्योंकि उन्हें सुसमाचार की कथा पूरी होने तक रुकना था। अगला पद सुनिए, मार्कुस 8 के 31 में लिखा है, और वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनियों और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह 3 दिन के बाद जी उठे। यीशु ने मुक्ति कार्य से हटकर अपना मनुष्यत्व प्रकट नहीं किया था। मुक्ति निर्भर करती है कि वह कौन है और उसने क्या किया, उसे अंतर्ग्रहण किया जाए। अब उनके प्रशिक्षण का अंतिम चरण आरंभ होता है। केसरिया फिलिपी में ही उसने सबसे पहले शिष्यों पर अपने क्रूस की बात प्रकट की थी। हम आगे मार्कुस 8 के 32 पद में पढ़ते हैं, उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पत्रस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। मित्रों, वे उसकी मृत्यु को स्वीकार करना ही नहीं चाहते थे। पत्रस ने यह बड़ी ही अशुभ बात कही थी। मार्कुस 8 के 33 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु उसने फिरकर और अपने चेलों की ओर देखकर पत्रस को झिड़क कर कहा कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। मित्रों, यीशु ने शैतानी वचन कहा। शैतान यीशु की मृत्यु के मूल को स्वीकार नहीं करता है। मार्कुस 8 34 से 38 पद में हम पढ़ते हैं, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, और मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। मित्रों, यीशु अपने मुक्ति कार्य से हटकर अपना प्रकटीकरण नहीं करता है। पत्रस के अंगीकार के बाद जब उन्होंने यीशु की वास्तविकता को जान लिया तब यीशु ने तुरंत उन पर प्रकट किया। मनुष्य के पुत्र के लिए आवश्यक है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिय और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और 3 दिन के बाद जी उठे। मार्कुस 8 उसके 31 पद। यहां वह मुक्ति शर्त नहीं रख रहा है, वह मुक्ति प्राप्त मनुष्यों की स्थिति समझा रहा है। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। मित्रों, आप कैसे मसीही जन हैं, अर्थात आप कैसे विश्वासी हैं? क्या आप एक ऐसे ही मसीही हैं जो उसे स्वीकार करता है, उसकी सेवा करता है और उसकी महिमा का कार्य करता है? मेरे मित्रों, आज जिस युग में हम वास करते हैं उसमें आज यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि इस अध्ययन के द्वारा आपने प्रत्येक ने प्रभु के आशीष को प्राप्त किया है। यह सच है कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में हमें बचाने के लिए आए। उसने हमारे बदले में अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया ताकि उसके लहू बहाए जाने के द्वारा से हम उद्धार को प्राप्त करें, अपने जीवन में क्षमा को प्राप्त करें। और इसी बात को वह अपने शिष्यों को बताते हैं कि वह इस धरती पर मरने के लिए आए। मेरे मित्रों, आज आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि यदि हम उसका नाम लेने से लजाते हैं तो एक समय आएगा कि वह भी अपने स्वर्गदूतों के सामने पिता की महिमा में आएगा, तब वह हमसे लजाएगा। क्या आज आप उसे लज्जित कर रहे हैं या उसके चलते आप लजा रहे हैं? लेकिन ध्यान रखें कि उस समय ज्यादा दूर नहीं है कि वह आपसे लजाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। इस वचन पर आशीष दे, हम सबको आशीष दे, ताकि हम आपसे ना लजाएं, आपके कार्यों से ना लजाएं, अपने जीवन की गवाही लोगों को दे, ताकि लोग आशीष पाएं। धन्यवाद पिताजी हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
हम तो जलते दीप। داغ ہر گناہ کے میرے دھو دیے, جس نے سولی پر جلائی جوتی پریم کی,